نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يرجون 19वां पारा है और सूरत अल फुरकान की आयत नंबर 21 से शुरू करेंगे। وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة और जिन्हें हमारी मुलाकात की तवक्को नहीं, उन्होंने कहा कि हम पर फरिश्ते क्यों नहीं उतारे जाते या हम अपनी आंखों से अपने रब को देख लेते। इन लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा समझ रखा है, यानी रब को देखने का मुतालबा करते हैं। अल्लाह अकबर। इन लोगों ने अपने आप को बहुत बड़ा समझ रखा है और सख्त सरकशी की है। जिस दिन ये फरिश्तों को देख लेंगे उस दिन इन गुनाहगारों को कोई खुशी न होगी और कहेंगे ये महरूम ही महरूम किए गए। ये कौन से फरिश्ते होंगे? मौत के फरिश्ते। वक़दिमना इला मा अमिलू और उन्होंने जो अमल किए थे हमने इनकी तरफ भड़कर इन्हें परागंदा जर्रों की तरह कर दिया। अलबत्ता उस दिन जन्नतियों का ठिकाना बेहतर होगा और ख्वाबगाह भी उम्दा होगी। और जिस दिन आसमान बादल समेत फट जाएगा और फरिश्ते लगातार उतारे जाएंगे उस दिन सही तौर पर मुल्क सिर्फ रहमान का ही होगा। और यह दिन काफिरों पर बड़ा भारी होगा। और काफिर की कैफियत क्या होगी? وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा हाय काश कि मैंने रसूल की राह इख्तियार की होती। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला हाय अफसोस काश कि मैंने फुलां को दोस्त न बनाया होता। इसने तो मुझे इसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी। और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। ये थी आयत नंबर 21 से 29 21 to 29। इसका अनवान लिखिए आप जैसे दोस्त के होते हुए दुश्मन की क्या जरूरत। हमारे यहाँ ये मुहावरा कब बोलते हैं? जब कोई दोस्त दोस्ती के रंग में दुश्मनी करने लगे। अल्लाह ताला ने इन आयतों में एक ऐसी खबर दी है कि जो इंसान को अगर दुनिया में समझ आ जाए तो वो कभी अल्लाह को नाराज ना करे। और वो क्या कि दुनिया में अमूमन अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले दुश्मन नहीं दोस्त होते हैं। उनके मुतालबे, उनकी ख्वाहिशात, उनकी इस तरह की खातरदारियाँ के जो अल्लाह के दीन की तरफ जाने से उसको रोक लें। नतीजा क्या होता है कि बाज़ दफ़ा इंसान अपने दोस्तों की वजह से अल्लाह के रास्ते से हट जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलमरु अला दीनी खलीली ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए सोच समझ के किसी को दोस्त बनाए। बुरी दोस्तियों के असरात आज यंग जनरेशन में तो हम देखते ही हैं और वो बदनाम भी बहुत है, लेकिन कुछ हालात हमें अपने भी देखने हैं। दोस्त को आप इस तरह कह लें आपका सर्कल, आपका हल्का अहबाब, आपका ग्रुप, वो लोग जिनके अंदर आप उठते बैठते हैं। आप जब उनके बीच में होते हैं तो वो आपसे खुश, आप उनसे खुश। फिर आप उधर से उठ के एक दफ़ा इस फुरकान की तरफ आने लगते हैं, अल्लाह के इस कलाम से जुड़ने लगते हैं, तो वह दोस्त बेचैन होने लगते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि बस अब ये तो हमारे हाथों से चला गया। और नतीजा क्या होता है कि फिर वो आपको अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेग पुलिंग वाला स्टाइल। ऐसे तमाम लोगों को याद रखना चाहिए कि कब्र की रात तन्हा है, हशर के दिन सवाल जवाब खुद करने हैं। एक इंसान अगर खुद दीन पे जम जाता है तो बाज दफ़ा वो अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाता है। कभी किसी दूसरे की वजह से आप अपने आप को अपने दीन से पीछे करने लगे ना तो फौरन कॉकरोचेस की मिसाल जहन में रखिए। आप शायद उनकी नेचर को जानते हो या आपने कभी उनकी बिहेवियर स्टडी की हो। कभी आप इनको खुली बास्केट में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए ना तो आपको ऊपर ढक्कन देने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो ही एक कॉकरोच उस बास्केट से बाहर जाने लगता है ना तो बाकी सारे उसको पकड़ के उसकी टांगे खींच लेते हैं। आप इसको पढ़ना चाहें वहीदुद्दीन की एक किताब में एक टॉपिक है इस बारे में, राज़े हयात में आप पढ़ भी सकते हैं। यही मिजाज एक मुसलमान से चाहिए। हमारा कोई एक दोस्त दीन से दूर होने लगे ना हम सब उसको बुलाएं। وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اور رسول کہے گا کہ میرے پروردگار بے شک میری امت نے اس قران کو چھوڑ رکھا تھا۔ اس کا عنوان لکھیے گا امید سفارش کی تھی لیکن نبی نے شکایت لگا دی۔ آج کتنے لوگ ہیں جو نبی کی سفارش کی امید پہ گناہ کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے نا تو اللہ کے نبی کھڑے ہوں گے اور پکڑ پکڑ کے ہمیں جنت میں بھیجتے جائیں گے۔ حالانکہ یہاں اللہ کا نبی ایک شکایت لگا رہا ہے کہ اللہ یہ ہے میری قوم کہ جنہوں نے اس قرآن کو چھوڑا تھا۔ آج چھٹے ہوئے ہیں قرآن لگتا ہے آپ کو؟ آج تو لوگوں نے اتنے پکڑے ہوئے ہیں، کہاں چھٹا ہے قرآن؟ قرآن چھوڑنا کیا کہ اس کے اوپر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बास गुनाहगारों को बना दिया, और तेरा रब ही हिदायत करने वाला और मदद करने वाला काफी है। और काफिरों ने कहा, इस पर ये कुरान सारे का सारा एक साथ क्यों न उतारा गया? इस तरह हमने थोड़ा थोड़ा करके उतारा ताकि इससे हम आपका दिल मजबूत करें, और हमने इसे ठहर ठहर कर ही पढ़कर सुनाया। ये आपके पास जो कोई मिसाल लाएंगे, हम इसका सच्चा जवाब और उम्दा तौजीह आपको बता देंगे। जो लोग अपने मुंह के बल जहन्नुम की तरफ जमा किए जाएंगे, वही बदतर मकान वाले और गुमराह तर रास्ते वाले हैं। और बिलाशुबा हमने मूसा को किताब दी और इनके हमरा इनके भाई हारून को इनका वजीर बना दिया, और कह दिया कि तुम दोनों इन लोगों की तरफ जाओ जो हमारी आयतों को झुठला रहे हैं। फिर हमने इनको बिल्कुल ही पामाल कर दिया। और कौमे नूह ने भी जब रसूलों को झूठा कहा तो हमने इनको गरक कर दिया, और लोगों के लिए इन्हें निशाने इबरत बना दिया, और हमने जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है, और आदियों और समूदियों और कुएं वालों को और इनके दरमियान की बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया, और हमने इनके सामने मिसालें बयान की, फिर हर एक को बिल्कुल ही तबाह व बर्बाद कर दिया। ये लोग इस बस्ती के पास से आते जाते भी हैं जिन पर बुरी तरह की बारिश बरसाई गई, क्या ये फिर भी उसे देखते नहीं? हकीकत ये है कि इन्हें मरकर जी उठने की उम्मीद ही नहीं। और तुम्हें जब कभी देखते हैं तो तुमसे मस्खरापन करने लगते हैं कि क्या यही वो शख्स है जिन्हें अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है? वो तो कहिए कि हम इस पर जमे रहे, वरना इन्होंने तो हमें हमारे माबूदों से बहका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और जब ये अजाबों को देखेंगे तो इनको साफ मालूम हो जाएगा कि पूरी तरह राह रास्त से भटका हुआ कौन था। ये थी आयत नंबर 31 से 42, 31 से 42। इन आयतों का टॉपिक हम लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा कुरान दिल में उतरता है। आयत को हाईलाइट भी कर लीजिए, बड़ी खूबसूरत आयत है 32 में। कज़ालिक लिनुसब्बित बिही फुआदक वरत्तलनाहु तरतीला। एक वो बारिश होती है जो तेज़ी से आती है, एकदम मट्टी को बहा के ले जाती है, और एक वो बारिश होती है जो रिमझिम, हल्की हल्की बारिश, वो मट्टी के अंदर जाती है, कहीं को बीज छुपा होता है ना, तो उसको लेके उगना शुरू होती है और वहाँ पौधा लगता है। यही दो तरीके हैं कुरान पाक के पढ़ने के। एक है तेज़ बारिश, उसका भी एक हुसन होता है, एकदम मौसम चेंज हो जाता है, एकदम तबीयत खिलने लगती है, और एक वो होती है कि जो रिमझिम होती है। कुरान पाक का दौरे कुरान जो है ये तेज़ बारिश है, और इसके बाद इसको लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ना ये रिमझिम है। तेज़ बारिश तो हम सही रहे हैं, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस रिमझिम से भी फ़ायदा लेने वाला बना दे। दिल की ज़मीन जब सूखी होती है ना, हल्का हल्का पानी डालेंगे ना तो नरम होगी। तेज़ बारिश होती है ना तो ऊपर की मट्टी साफ़ कर देती है, जो गफलत के अंधेरे, जो ख्वाहिशात के अंधेरे होते हैं ना, दिल पे जो मैल आया होता है ना, वो धुल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। दौरे कुरान से ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि दिल ऊपर से साफ़ होने लगता है, बाहर की मट्टी झड़ती है, लेकिन दिल के अंदर की मट्टी या दिल के अंदर के गंदे ख्यालात कब मिटते हैं कि जब एक एक चीज़ लेने की कोशिश करते हैं। और वैसे मेरा ख्याल है कि आप लोगों का ये दौरे कुरान तेज़ बारिश नहीं है, ये मीडियम बारिश है। आरई तमन तखस इलाहु हवाहु अफान ततकुनु अलैहि वकीला। क्या आपने उसे भी देखा जो अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बनाए हुए है? क्या आप उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या आप इसी ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते या समझते हैं? वो तो निरे चौपायों जैसे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा भटके हुए। ये थी आयत नंबर 43 से 44। इन आयात का टॉपिक लिखिए, ख्वाहिश का गुलाम। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, इस आसमान के नीचे अल्लाह के सिवा पूजे जाने वाले माबूदों में से सबसे ज्यादा संगीन बुत जो है वो इंसान का अपना नफ्स है। ख्वाहिश की पैरवी करना, जो चाहो खा लो, जो चाहो बोल लो। हर वक्त जब हम अपने आप को पूछते रहते हैं ना, जो मेरा दिल चाहे, आज का तो स्लोगन ही ये है, मेरी लाइफ इज माई स्टाइल, ये मेरी जिंदगी है, ये माई स्टाइल क्या है, ये नफ्स की पूजा है। अल्लाह चाहते इस नफ्स को गुलाम बनाओ, किसका? अपने इस जिस्म को गुलाम बनाओ अपनी रूह का। और रूह क्या है? जो नेकी का हुक्म देती है। यहाँ कोई एक नियत कर ले, छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, कोई एक ख्वाहिश जो आपके दिल में कई दिन से मचल रही थी और आप उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, ले लूं, खरीद लूं, दे दूं, चली जाऊं, खा लूं, बोलूं, यहाँ नियत कर ले, कोई एक बात नफ्स की रोक ले कि जिस पे बड़े बेचैन थे, अब कहे नहीं मैंने नहीं मानी, डांटा करें नफ्स को, नहीं मानूंगी, चुप करके बैठो, जैसे बच्चों को डांटते हैं ना, खामोश। इस तरह दिन में 5-6 दफा भी अगर हम अपने नफ्स को कहना खामोश, तो यकीन करिए सीधा हो जाएगा। अलम तर इला रब्बी का कैफ मद्दज़िल्ला वलौ शाअ लजअलहू साकिना। क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने साय को किस तरह फैला दिया है? अगर चाहता तो इसे ठहरा हुआ ही कर देता। फिर हमने आफताब को इस पर दलील बना दिया। सुम्मा कबज ना हुई लई ना कबदई यसीरा। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको अपनी तरफ खींच लिया। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को उठ खड़े होने का वक्त। और वही है जो बाराने रहमत से पहले खुशखबरी देने वाली हवाओं को भेजता है और हम आसमान से पाक पानी बरसाते हैं ताकि इसके जरिए से मुर्दा शहर को जिंदा कर दें। हम अपनी मखलूकात में से बहुत से चौपायों और इंसानों को पिलाते हैं। ये थी आयत नंबर 45 से 49, 45 से 49। इसका उन्वान लिखिए, इतना बड़ा सूरज रब के कब्जे में। ये जो दो आयतें हैं ना, 45 और 46, आपको सब दिख रहा है ना कि अल्लाह ताला इसमें अपनी निशानियों के तذکرے में सूरज के अपने कब्जे में होने की बात कर रहे हैं। वलकत सर्रफनाहु बैनहुम लियज़्ज़करू फअबा अक्सरुन्नास इल्ला कुफूरा। और बेशक हमने इसे इनके दरमियान तरह तरह से बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर फिर भी अक्सर लोगों ने सिवाय नाशुक्री के नहीं माना। अगर हम चाहते तो हर हर बस्ती में एक डराने वाला भेज देते, बस अब काफिरों का कहना ना माने। और कुरान के जरिए इनसे पूरी ताकत से जिहाद कीजिए। ये है आयत नंबर 50 से 52, 50 से 52। इसका उन्वान लिखिएगा, जिहाद तलवार से नहीं कलाम से। बड़ी प्यारी आयत है, इसको हाईलाइट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। 52 आयत का आखिरी हिस्सा है, वजाहिदहुम बिही जिहादन कबीरा। इनके साथ इस कुरान के जरिए जिहाद करो। ये कौन सा जिहाद है भाई? इसलिए कि मुखालफत शुरू ही तब हो जाती है जब कुरान खुलता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि इस कुरान को आम करके काफिरों के कुफर को ख़त्म करो, मुनाफिकों के निफाक को ख़त्म करो। ख्वाहिशों के अंधेरों में पड़े हुए लोगों को इस किताब की तालीमात के जरिए उन अंधेरों से निकालो। ये काम वाकई बड़ा मेहनत तलब है। इंसान के असाब शल होने लगते हैं और अगर मकसद पे निगाह ना हो तो इंसान के मेरी बला से मुझे क्या। लोगों को कलाम से जोड़ना हकीकत है इतना ही मुश्किल है जैसे किसी ख्वाहिश का चूर शख्स जो शराब के नशे का आदी है उससे उस नशे को छुड़ाना। गुनाहों का नशा होता है, बंदे को बेकार रहने का भी नशा लग जाता है, इंसान को शॉपिंग का भी नशा लग जाता है, इंसान को गॉसिप का भी नशा लग जाता है, इंसान को ज्वेलर्स की दुकान पे जाने का भी नशा लग जाता है, टेलर मास्टर्स के साथ लड़ाई करने का भी नशा लग जाता है। ऐसे लोगों को सच्ची दावत देना हो, इस कुरान से जुड़ जाओ कि बाज़ दफ़ा वाकई ये जिहाद अकबर लगता है। एक मौके पे सहाबे कराम जंग से वापस आ रहे थे तो वो उन्होंने कहा कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ आ गए। इसकी सनद में थोड़ा सा शुबा है लेकिन बात देखें तो मैदाने जंग में जाके दुश्मन को मारना ये छोटा जिहाद है। वो तो थोड़े से लोग मरेंगे ना, लेकिन लोगों की सोचों के अंदर से वो गलत चीज़ें निकालना और सोसाइटी और माशरे के ट्रेंड से निकाल के अल्लाह के दीन के ट्रेंड के मुताबिक उनको करना, ये वाकई बहुत बड़ा काम है। ये अल्लाह ही करवाए तो हो सकता है, वरना इंसान खुद तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता। फरमाया, वहु अल्लज़ी मरजल बहरैन, और वही है जिसने दो समंदर आपस में मिला रखे हैं। ये मीठा है और मजेदार और ये है खारी कड़वा, और इन दोनों के दरमियान एक हिजाब और मजबूत ओट कर दी। वो है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया फिर इसे नसब वाला और ससुराली रिश्तों वाला कर दिया। बिलाशुबा आपका परवरदिगार कादिर है। ये है आयत नंबर 53 से 54, 53 से 54। इसमें लिखिए, कुछ रिश्ते मीठे और कुछ कड़वे। आप इन दोनों आयतों का जरा तकाबुल करके देखें। पहले दो दरियाओं की बात थी, एक मीठे पानी का और एक कड़वे पानी का। अगली आयत में नस्बी रिश्ते और ससुराली रिश्तों का ताल्लुक पेश कर दिया। यही है जिंदगी, खून के जो रिश्ते होते हैं ना, नस्ब के रिश्ते, इसमें मोहब्बतें वैसे मिल जाती हैं। बच्ची माँ के साथ बात भी ना करेगी ना तो माँ उस बच्ची के पीछे पीछे फिरेगी। खून के रिश्तों में मोहब्बत रब दे देता है, लेकिन शहर के रिश्तों में मोहब्बत मिलती है कुर्बानियों से। मिलती है मोहब्बत, बहुत मिलती है, लेकिन ये कुर्बानी की सूरत में होती है। बस दफ़ा इंसान को कड़वे ससुराल मिल सकते हैं, मिलहुन उजाज, और बस दफ़ा मीठे मिल सकते हैं। इंसान का काम क्या है, इस दरिया से सीख ले। मीठा और खड़वा दोनों साथ रहते हैं, ये दुनिया का एक कोना ऐसा, कभी मौका हो तो आपको दिखाएंगे। दो पानी है लेकिन आपस में नहीं मिलते, लेकिन अपनी आइडेंटिटी लूज भी नहीं करते। ये मैसेज है इन आयतों का। एक अच्छा इंसान बुरे माहौल में भेज दिया भी जाए, गम ना करो, अपनी मिठास कम ना करो, एक वक्त आएगा वो भी तुम्हारी मिठास की तरफ आएगा। और इसका ऑपोजिट भी हो सकता है, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکے نہ کوئی نقصان پہنچا سکے، اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کی مدد کرنے والا۔ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے، کہہ دیجئے کہ میں قرآن کے پیغام کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے، اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 55 سے 59، 55 سے 59۔ اس کو عنوان لکھیے گا، میرا اجر تو یہی ہے کہ تم عمل والے بن جاؤ۔ ہائی لائٹ کر لیجئے، اس آیت میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ گزرا، اور وہ کیا ہے؟ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ لوگ اللہ کے نبیوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بتائیں آپ کے اس کام پہ آپ کو کیا عوض دیں، کوئی لالچ ہے، کچھ چاہیے آپ کو؟ تو نبیوں نے وہ پیغام دیا کہ میرا اجر کیا ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کر لو۔ ایک سچے داعی دین کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کو فائدہ دینا چاہتا ہے نا، تو یہ فائدہ دے دے کہ اس کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کر لے، اور اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ اس بتانے والے کی بات کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر اجر کہاں تک جائے گا، اس کے بعد جتنے لوگوں تک وہ بات جائے گی اس تک بھی وہ بات جو ہے وہ پہنچنے لگے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی بات پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ پر توکل کریں جسے کبھی موت نہیں، اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیزگی بیان کرتے رہیں، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے۔ آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھئے، ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں، رحمان کیا ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اس تبلیغ نے ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں آفتاب بنایا، اور منور ماہتاب بھی، یعنی چاند چمکتا ہوا، اور اسی نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا۔ اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ تھی آیت نمبر 58 سے 62، 58 سے 62۔ ان کا عنوان لکھیے، رحمان کے لفظ سے ناآشنا۔ مکہ والے لفظ رحمان نہیں جانتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ ایک ایسا موقع آیا کہ جب لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے، تو مکہ والے کہنے لگے، اے نبی، ہمیں تو تم بہت سارے خداؤں سے روکتے ہو اور خود تم 3 خداؤں کا نام لیتے ہو، اللہ، رحمان اور رحیم، اور ان کو لفظ رحمان سے بڑی چڑھ تھی۔ آپ نے کبھی نام سنا ہو مسیلمہ کذاب کا، تو وہ اپنے آپ کو رحمان الیمامہ کہلاتا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ رحمان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے کہ رحمان کی قدر تو کسی اللہ کے بندے سے پوچھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے رحمان ہونے سے محبت دے دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس رحم کو محسوس کریں۔ ایسے پیارے رب کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہتا ہے۔ یہاں سے اب آگے سورت کے آخر تک کچھ بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنا بندہ کہتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور آپ سب کو بھی کہوں گی کہ ان آیات کو پڑھتے وقت ہر جگہ اپنے آپ کو عباد الرحمن میں تصور کریں، اور چیک کرتے جائیں کہ کیا میرے اندر یہ خوبیاں ہیں، اور اگر کوئی خوبی نہیں ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ خوبی پیدا کر دے۔ کوئی خامی نکلے تو اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی عملی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور مجھے تو لگتا ہے ایک خوبصورت مومن کا ظاہری پوسچر اور اس کے اندر کے حالات کو ان آیتوں میں کھولا گیا۔ بندے تو سارے رب کے ہیں، لیکن کچھ بندوں کو اللہ اپنا بندہ کہتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام، یعنی الجھتے نہیں جاہلوں سے۔ ہم سوچیں بحثوں میں تو نہیں وقت گزرتا۔ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں۔ ہم اپنی راتوں کو سوچیں، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور ہی رکھنا کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اور جو خرچ کرتے وقت نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی، بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے پوچھیں، جب کوئی چیز پسند آ جاتی ہے تو اس وقت اس کو حاصل کرنے کا میرا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، وہ ذلت اور خواری کے ساتھ اسی میں پڑا رہے گا. ہاں مگر اللہ من تاب وآمن وعمل صالحا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے. اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. اس آیت کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ. یہ تو نہیں کہ ان کی زندگی میں لغو ہوگا نہیں، لیکن وہاں ٹھہرتے نہیں. ان کا مزاج اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ لغویات اور گندی اور بیکار محفلوں میں بیٹھنے کی بجائے عزت کے ساتھ اپنا آپ بچا کے وہاں سے گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے، اور وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اور یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. اور اولاد اور بیوی بچے آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتے ہیں؟ جب ہم اپنی آنکھوں سے ان کو نیکیوں کی طرف دوڑ دوڑ کے بھرتا ہوا دیکھیں، ان کو نمازوں کا عادی دیکھیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو بھی پکا سچا نمازی بنا دے، اور ہمارے بھی دل نمازوں میں لگا دے. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بلند و بالا خانے دیے جائیں گے، انہیں جہاں دعا و سلام پہنچایا جائے گا اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے. کہہ دیجئے، اگر تمہاری دعا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری بالکل پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے ہو، اب ان قریب اس کی سزا تمہیں چمٹ جانے والی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سزاؤں سے محفوظ رکھے. آیت نمبر 63 سے 77، ان آیات کا عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اوصاف. اوصاف کہتے ہیں کوالٹیز، کریکٹرسٹکس. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی عادت ڈال دے اور اسی کے اوپر ہمیں چلنے والا بنا دے. الحمدللہ سورۃ فرقان پوری ہوئی.